بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران اور پانچ جماعت گروپ کے درمیان ایٹمی معاملے پر ویانہ مذاکرات. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین، ابھی آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا کہ ایٹمی معاملے پر ایران اور پانچ جماعت گروپ کے درمیان مذاکرات کا پانچواں دور ویانا میں جاری ہے، جو جمعے تک بھی جاری رہ سکتا ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ حتمی سمجھوتے کے ابتدائی مسودے پر کام بھی شروع ہو گیا ہے. اس درمیان وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ بہت سے ایسے بنیادی معاملات ہیں جن پر ابھی اتفاق نہیں ہو سکا ہے، اور دونوں فریقوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فریق مقابل کے بعض موقف غیر قابل قبول ہیں. وزیر خارجہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی کے اپنے مسلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگرچہ مغربی ملکوں نے یورینیم کی افزودگی کے حق کو قبول کرنے کی بات کی ہے، لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ ایران کتنے فیصد تک یورینیم افزودہ کرے اور اس کے لیے اس کے پاس کتنی سینٹریفیوج مشینیں ہوں. ایران کا کہنا ہے کہ اس نے ضرورت کے مطابق 20% تک افزودگی کی توانائی حاصل کر لی ہے، اور ضرورت پڑنے پر وہ اس کام کو جاری بھی رکھے گا. اور دوسری طرف تحقیقاتی عمل کے جدید ترین سینٹریفیوج مشینوں سے استفادہ بھی اس کا حق ہے، جبکہ فرانس اور امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ صرف چند سو تک ہی یہ مشینیں رکھے. مغربی ممالک ایران پر یہ دباؤ ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی کے لیے ایران کی جانب سے ممکنہ کوششوں کو بہانہ بنا کر ڈال رہے ہیں. مغرب کے اسی بے بنیاد الزام کا جواب دیتے ہوئے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایٹمی اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی مخالفت کا بہانہ بنا کر وہ ممالک ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں جنہوں نے سن 1980 کے اشرے میں صدام کو عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار فراہم کیے تھے، اور اس قسم کے ہتھیاروں کی وہ حمایت کرتے تھے. وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ عصر حاضر کا سب سے بڑا مذاق ہے. بہرحال ایک اہم معاملہ ایران پر عائد غیر قانونی پابندیوں کو اٹھائے جانے کا بھی ہے. کیا فریق مقابل میں معاملے کو حل کرنے کے لیے ضروری ارادہ پایا جاتا ہے؟ مذاکرات سے قبل ایران اور امریکہ، اور اسی طرح ایران فرانس، اور ایران اور روس کے درمیان الگ الگ مذاکرات، اور پھر وزیر خارجہ جواد ظریف اور امریکی نائب وزیر خارجہ ولیم برنس کے درمیان مذاکرات، یہ ساری باتیں کس بات کا پتہ دیتی ہیں؟ مذاکرات میں بعض مغربی ملکوں کی طرف سے بار بار غیر منطقی مسائل اٹھائے جانے کے پیچھے کون سے عوامل اور محرکات ہو سکتے ہیں؟ صہیونی لابی اور علاقے میں بعض رجعت پسند حکومتوں کا امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں پر کتنا دباؤ ہے ان ملکوں کا، اور وہ مذاکرات کو کامیاب نہ ہونے دیں، اس سلسلے میں ان کی کتنی کوششیں ہیں؟ اس قدر بظاہر سنجیدگی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کیا محض مذاکرات ہیں؟ اب تک کے مذاکرات سے کیا مغرب نے یہ سبق نہیں سیکھا کہ ایران اپنے ایٹمی معاملے کی ریڈ لائن کو کسی کو عبور کرنے کی اجازت نہیں دے گا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے لیے ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو بھی دعوت دی ہے. مگر ملاحظہ فرمائیے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ یہ رپورٹ.
ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے درمیان ایٹمی مذاکرات اور اس معاملے پر تبادلہ خیال کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ گروپ پانچ جمع ایک کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ سختی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تاہم مشترکہ جامع اقدامات کے پروگرام کے متن کی تیاری کا کام شروع ہو گیا ہے. وزیر خارجہ نے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ بنیادی اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں، اور حتمی سمجھوتے کے متن کی تیاری کا کام نہایت سست روی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے درمیان جامع سمجھوتے کے لیے مذاکرات کے نئے دور کا آغاز آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پیر کے روز ہوا، اور مقامی وقت کے مطابق جمعرات کو وزیر خارجہ جواد ظریف اور یورپی یونین میں خارجہ پالیسیوں کی ذمہ دار کیتھرین ایشٹن کے درمیان مذاکرات جاری رہے. جمعرات کو مذاکرات کے آغاز سے قبل روس کے خارجہ سیکرٹری سرگئی ریابکوف نے کہا کہ 20 جولائی تک اتفاق رائے ہو سکتا ہے، مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے درمیان جاری ویانا مذاکرات اس لیے بھی انتہائی اہم سمجھے جا رہے ہیں کیونکہ اس مرحلے میں فریقین جامع معاہدے کا مسودہ تیار کر رہے ہیں. تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں جامع معاہدہ تیار ہوگا یا پھر 20 جولائی کی ڈیڈ لائن میں اضافہ کیا جائے گا. ویانا میں پانچویں دور کے مذاکرات کو سخت پیچیدہ اور مشکل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایرانی حکام نے بھی اسے مثبت ماحول میں کیے جانے والے مذاکرات کہا ہے، لیکن ماضی کے تجربات کی بنا پر مذاکرات کے نتائج کے بارے میں قیاس آرائی سخت کام ہے، کیونکہ ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے مذاکرات کے عمل میں دیگر بہت سے عناصر دخیل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایران اور گروپ پانچ جمع ایک نے ایک جامع ایٹمی سمجھوتے کی تدوین کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے اب تک مذاکرات کے چار دور انجام دیے ہیں۔ ان میں سے تین ابتدائی دور تھے، لیکن چوتھا مرحلہ مختلف تھا کیونکہ اس میں ایک جامع سمجھوتے کی تیاری پر توجہ دی گئی تھی۔ تاہم اس دور میں بھی کوئی پیش رفت حاصل نہ ہو سکی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے اچانک ہی ایسے مطالبات شروع کر دیے جو عبوری معاہدے سے ہٹ کر تھے۔ پانچویں دور کے مذاکرات میں ایسی کوئی صورتحال درپیش نہ ہو، اس کے لیے پانچویں دور کے مذاکرات سے قبل تمام فریقوں نے مختلف سطحوں پر مذاکرات کیے۔ بہرحال 20 جولائی تک ایک جامع اور حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے ویانا پانچ مذاکرات ایک اہم موڑ ہے، لیکن ابھی آگے سخت اور دشوار راستہ ہے کیونکہ ابھی بہت سے امور تصفیہ طلب ہیں، جبکہ ان مذاکرات کے راستے میں رکاوٹیں بھی بہت زیادہ کھڑی کی جا رہی ہیں، اور ایٹمی معاملے پر مغرب کے رویے میں بھی سچائی کی جھلک نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ ایرانی قوم کے بنیادی حقوق کو ہی تسلیم کرنے میں لئے تو لال سے کام لے رہا ہے، اور کچھ پس پردہ طاقتیں بھی ہیں جو مذاکراتی عمل میں مثبت فضا کو خراب کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود مذاکرات سے قبل امریکہ نے جو رویہ اختیار کیا اور جس سطح پر اس نے مذاکرات میں حصہ لیا ہے، اس سے کچھ تجزیہ نگاروں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس بار امریکہ مذاکرات کے سلسلے میں کچھ سنجیدہ ضرور ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ابھی ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور ہمارے یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب، اور دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار سوربھ کمار شاہی صاحب، اور اسلام آباد سے رابطے میں ہیں عالمی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ ان تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ ڈاکٹر صاحب، پانچواں دور جاری ہے ویانا میں، اس سے پہلے چار دور کے مذاکرات ہو چکے ہیں، اور چوتھا دور جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ حتمی سمجھوتے کا متن لکھنے کے لیے منعقد ہوا، لیکن بہرحال بعض ملکوں خاص طور پر امریکہ کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن اس دور کے جو مذاکرات جاری ہیں ویانا میں، کہا جا رہا ہے کہ جو متن لکھنے کا کام شروع ہوا ہے یہ آگے کی سمت ایک قدم ہے، تو کیا اسے آگے کی سمت ایک قدم مانا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، اس جو ٹاکس کا جو ہے یہ ففتھ راؤنڈ ہے، یہ مختلف حوالے سے جو ہے اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک کمپریہنسو پیکٹ ہو، اور یہ راؤنڈ جو ہے یہ ڈیسائسو ہے۔ تو چوتھے راؤنڈ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ہے وہ اختلافات، یعنی جو گلف ہے اختلافات کی، وہ بہت زیادہ تھی، تو اس میں جو ہے جو پانچویں مرحلے میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قسم کی مشکلات جو ہے اب وہ جو ہے اس کو کافی حد تک ریموو کیا جائے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ بیسیکلی یہ آپ دیکھیں تو ویسٹ کی طرف سے، یو ایس کی طرف سے، 5+1 کی طرف سے جو ہے ایک فلیکسیبلٹی ہے، چونکہ ایکچولی وہ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک ریجنل پاور ہے، اور جو یورینیم کی افزودگی یا جو ایٹامک ٹیکنالوجی ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، وہ ایران کا ایک جو ہے وہ رائٹ بنتا ہے، چونکہ ایران کے جو آئی اے ای کی جو پچھلی رپورٹس ہے سالوں میں، اس ایران کے پروگرام میں کوئی ڈیویشن یا کوئی اس قسم کی چیز ملنے میں نہیں ملی۔ تو اب یہ بھی ہے کہ ان مذاکرات میں کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہیں ریجنل انٹرنیشنل جو اس مذاکرات کو جو ہے وہ انفلوئنس کر رہے ہیں۔ ایک وجہ تو سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ایران اور ویسٹ کے درمیان اگر ٹینشنز جو ہے اس کو ریڈیوس ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے ویسٹ کے لیے بہت زیادہ فوائد ہے، چونکہ ایران جو ہے وہ ایک ریجنل اکانومی ہب بھی ہے، جس میں یہ ہے کہ ایرانین مارکیٹ میں بہت ساری ویسٹرن ملٹی نیشنل کمپنیز کو جو ہے وہ ایکسیس ملے گی، اگر دونوں یعنی سائڈس میں جو ہے وہ ٹینشن کم ہوتی ہے۔ دوسرا اہم فیکٹرز یہ ہے کہ ویسٹ، یو ایس لیڈ ویسٹ اور ان کے جو ویسٹرن الائز تھے، जो कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की सीरिया में या दूसरी जगहों पे इराक़ में पहले हिमायत कर रहे थे, अब वो वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खदशात हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सीरियन गवर्नमेंट और इराकी गवर्नमेंट तो इन दहशत गर्दों को सप्रेस कर लेंगे, अगर ये वापस लौटते हैं तो ये जो है यही दहशत गर्द जो है फ्रांस में, आप देखें कि फ़्रांस के 500 अफराद जो है वो सीरिया में, तो यही जो है वेस्ट में जो है वो दहशत गर्दी फैलाएंगे। तो अब ईरान इस रीजन में तन्हा एक ऐसा कंट्री है जिसने हमेशा इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की मुखालफत की है और वेस्ट के ख़िलाफ़ हमेशा ये अपनी वॉइस रेज करता रहा है कि ये ग्रुप्स जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है, ये आपके जो रीजनल एलाइज है यूएस के, कतर है, सऊदी अरेबिया, आप जो कुछ भी उनके साथ मिलके इन ग्रुप्स को फॉर्मेशन है, इन ग्रुप्स को बना रहे हैं या फाइनेंस कर रहे हैं, इनकी फंडिंग कर रहे हैं, इनकी मॉरल हिमायत कर रहे हैं, ये पूरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो अब इस पाँचवें राउंड में जो कुछ आप देख रहे हैं कि वेस्ट की तरफ से जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एक आप ग्लोबल पिक्चर देखें, एक ब्रॉडर पिक्चर में ये है कि जो ईरान का मौक़िफ पिछले इनकलाब के बाद जो रहा है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की मुखालफत, इंटरनेशनल लॉ की जो है वो ईरान ने हमेशा कहा है कि आप इसराइल जो है उसकी हिमायत करते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन कर रहा है, तो यही बयान के वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो सद्दाम को जो है वो न्यूक्लियर वेपन दिए थे और अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को रुकावट की, तो ये जो पिछले 30 से ज़्यादा 35 सालों में ईरान का जो मौक़िफ रहा है उसमें जो इंटरनेशनल ओपिनियन है और जो वो देखने में ये रहा है कि ईरान जो है वो एक मॉडरेट पाथ पे था, एक राइट पाथ पे था, तो जबकि ईरान ने कभी जो है एक्सट्रीमिज़म की हिमायत नहीं की, ईरान ने किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ईजाद नहीं किया, ईरान ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एक्टिविटी थी वो इंटरनेशनल लॉ और जो यूएन के चार्ट और आईईई के जो है असूलों के मुताबिक किया है, तो अब इंटरनेशनल ओपिनियन भी है, उसका प्रेशर है यूएस पे कि ईरान के साथ जो है इन लोगों की मुखालफत की कोई लॉजिक और कोई ख़ास रीज़न जो है वो नहीं बनती, तो इस वजह से अगर आप देखें तो इख्तलाफात तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वेस्ट ईगर है, चूँकि जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है वो ये था कि आप जो ईरान फोबिया है उसकी कोई रीज़न नहीं है उसकी कोई, तो इस वजह से मुमकिन है कि जुलाई में जो है इख्तलाफात के बावजूद जो है ईरान के साथ एक कम्प्रीहेंसिव पैक्ट पर जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और दूसरे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उस पे जो है कोई जो टेंशन हो उसको रिड्यूस किया जा सके और एक एग्रीमेंट जो है वो एक डील जो है ये दोनों टू साइड्स जो है उस पर पहुँच पाए।
जी बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं इस्लाम आबाद जहाँ पर रबते में हैं सियासी, हाँ दिल्ली चलते हैं, वहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी सौरभ कुमार शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
जी शुक्रिया शाही साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि अब जो ये पाँचवा दौर चल रहा है और शायद कल तक भी जारी रहे, इसमें वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ साहब ने कल रात एक बात कही, वो ये कि जो हतमी समझौता है उसका मेटर लिखने का काम शुरू हो गया, अगरचे वो मेटर इब्तदाई नौयत का है, और ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे मामलात पर कोई समझौता हो गया है, अभी भी इख्तलाफात बहुत बाकी हैं, तो यही जो लिखना शुरू हो गया है मेटर या मसौदा जिसको कहते हैं, क्या इसको ही एक कामयाबी समझा जा सकता है?
देखें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करें अगर इस पूरे डील की, जो कॉम्प्रिहेंसिव डील की हम बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो मई के एंड में हुई थी, जिसको कि बहुत ज़्यादा वो मीडिया में आया नहीं, वो ये कि आईएए की जो लास्ट रिपोर्ट, जो स्टेटस रिपोर्ट आईएए ने प्रेजेंट की थी, यानी कि एंटरिम डील के बाद की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी जो आईएए ने प्रेजेंट की थी, उसमें उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच किया था। उस रिपोर्ट में पैरा 56 जो कि ये डील कर रहा था सिविल और उसके मिलिट्री एस्पेक्ट्स को न्यूक्लियर प्रोग्राम के ईरान के, उस पैरा 56 में पहली बार, यानी कि जब से आईएए का इंटरवेंशन इस पूरी चीज़ में हो, उसमें पहली बार उसने एडमिट किया कि जो एक कंट्रोवर्शियल जो कह सकते हैं कि हमारी तरफ से कंट्रोवर्शियल नहीं पर आईए की तरफ से कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट जो था जिसे हम बोलते थे एक्सप्लोडिंग ब्रिज वायर यानी EBW EBW जो होती है वो किसी भी न्यूक्लियर वो बताता है कि कोई भी सिविल प्रोग्राम जो है वो कब मिलिट्री प्रोग्राम बनने के कगार पे खड़ा है। इस EBW को ही बेसिस बना के आपको पता होगा 2008 से जो ईरान के खिलाफ ये पूरी की पूरी गोलबंदी की गई थी वो इस एक EBW एक्सपेरिमेंट के लिहाज से की गई थी जिसमें कि वेस्ट ने एक स्टडी में बताया कि ईरान ने इस EBW का यूज़ किया मिलिट्री एंगल्स को लेने के लिए। जो अभी 20 मई को रिपोर्ट IAEA की आई है और उस रिपोर्ट में पैरा नंबर 56 में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़े ही साफ शब्दों में IAEA ने यह कह दिया है कि EBW यानी एक्सप्लोडिंग ब्रिज वायर एक्सपेरिमेंट जो ईरान ने की थी वो सिविलियन यूज़ के लिए की थी। ये बड़े ही साफ शब्दों में उसमें लिखा हुआ है, अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, यानी एक पूरी बेसिस जो ईरान के अगेंस्ट सैंक्शंस की थी जो 2008 से स्ट्रेंथन जिसको कि उन्होंने किया उस वो बेसिस खत्म हो गया। अब देखें जब अब पॉलिटिकल बेसिस अब इसका कुछ नहीं रहेगा, अब जो भी बेसिस डायलॉग की वो टेक्निकल बेसिस रहेगी क्योंकि जो एक स्टडी को लेके आपने पिछले 6 सालों से जायज से कह लें आप कि अगर आप उसको कोशिश कर रहे हैं दबाने की ईरान को तो वो पूरी की पूरी स्टडी जो है वही गलत साबित हो गई क्योंकि IAEA जो आपकी एजेंसी है उन्होंने ये कह दिया कि एक्सप्लोडिंग ब्रिज वायर की EBW जो एक्सपेरिमेंट ईरान ने किया था वो सिविलियन यूज़ के लिए किया था, पहली बात। तो एक बेसिस खत्म हो जाती है पॉलिटिकल बेसिस, यानी अब आप अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यानी अमेरिका जो अपने अमेरिकन्स हैं या फ्रांस अपने सिटीजन्स को ये समझा पाएगा कि देखे हम जो इतनी सालों से कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, ये IAEA ने प्रूव कर दिया, पहली बात। दूसरी बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कि एक कंट्रोवर्सी जिसे अभी जो जैसा कि उन्होंने जरीफ साहब ने कहा कि कई चीज़ें अभी बाकी है प्रोग्राम में जिसको कि इंक्लूड करना होगा हमें ड्राफ्ट में, उसमें एक ब्रेकआउट इशू जो ब्रेकआउट कैपेसिटी है ईरान की उसको लेके एक इशू बनाया जा रहा है जो कि पहले नहीं था, इंटरिम डील में ये इशू नहीं थी, इसको बाद में अमेरिका ने शायद हो सकता है उसकी ये मकसद हो कि डिरेल कर दें जी पूरे टॉक को, तो उसने ब्रेकआउट कैपेसिटी को इशू बनाया और ये कहा कि जी आपके पास 36,000 से जायद जो हैं वो सेंट्रीफ्यूज हैं जो मॉडर्न सेंट्रीफ्यूज हैं क्लास 2 जिसे हम कहते हैं और आप उसको कम करके 10,000 से कम कर दें, यानी अगर जिस दिन आप चाहें भी कि इसका एक मिलिट्री यानी कि आप बम बनाने की कोशिश भी करें तो आप 6 महीने जो अभी आपकी कैपेसिटी है उसको बढ़ा के आप 1 साल से 1.5 साल तक कर दें, यानी 1.5 साल से पहले आप नहीं बम बना पाएंगे अगर आप चाहेंगे भी। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है क्योंकि देखिए इसकी कोई टेक्निकल वैलिडिटी नहीं है, मैं चूंकि ये फॉलो करता हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इसके पूरे को, तो मैं आपको बता दूं कि देखें 2 रिएक्टर्स हैं जहाँ पे ये काम चल रहा है, फोर्दो और नटांज, और दोनों ऐसे रिएक्टर्स हैं जहाँ IAEA की निगरानी में उनके कैमरे 24 घंटे लगे हुए हैं, तो 1 सेकेंड के लिए भी अगर ईरान के साइंटिस्ट ने सिविलियन से अगर उसको न्यूक्लियर मिलिट्री डायमेंशन दिया तो वो कैमरे में आ जाएगा, तो फिर ये 6 महीने और 1.5 साल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक पूरा का पूरा एक बरगलाने की ये कोशिश जो है वो की गई लोगों को, क्योंकि देखिए जनरल पब्लिक को इतनी टेक्निकलिटी पता नहीं होती तो उन्हें बरगलाने की ये कोशिश की गई, पर इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। दोनों के दोनों रिएक्टर जो है वो 24 घंटे IAEA के निगरानी में हैं और वो जानता है IAEA कि इतने सालों में 1 सेकंड के लिए भी ईरान ने कभी भी सिविलियन पार्ट्स को मिलिट्री डायमेंशन नहीं दिया है। तो एक ये दोनों चीजें जो हैं वो बेसिकली अब क्लियर हो गई है, तो इसको इंक्लूड किया जा रहा है। कई और एस्पेक्ट्स हैं जिसको अमेरिका इंक्लूड करना चाह रहा है इसराइल के प्रेशर में और ऑफकोर्स उसको जो है वो ईरान एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर इनिशियल जो स्टेज जो जिसको हम कह सकते हैं कि जरीफ साहब ने जैसा कि इशारा किया कि एक ड्राफ्टिंग जो है वो शुरू हो गई है, वो ड्राफ्टिंग जो है वो उसकी बेसिस जो है वो यही 2 चीज़ें हैं। पहली ये कि IAEA का ये मान लेना कि ईरान ने कभी भी एक्सप्लोडिंग ब्रिज वायर एक्सपेरिमेंट जो है वो मिलिट्री डायमेंशंस के लिए यूज नहीं किया था। दूसरी बात ये कि 24 घंटे निगरानी में है रिएक्टर्स और इसीलिए ब्रेकआउट कैपेसिटी का जो ये पूरा इशू है वो जिसे हम डिप्लोमेसी में एक वर्ड यूज करते हैं रेड हेरिंग, वो रेड हेरिंग है, यानी वो उसमें कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक आपके ध्यान को बटाने के लिए इस तरह की एक इशू लाई गई है। इन 2 इशू को सेटल कर दिया गया, उसको सेटल होने के बाद इनिशियल ड्राफ्टिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। बाकी ऐसे कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनको लेके अभी जो है निगोशिएशन होंगी, पर मुझे ये लगता है कि जो 2 ब्रॉड बेसिक इश्यूज थे वो अब सेटल हो गए हैं।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। अब चलते हैं एक बार फिर जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था इस्लामाबाद, जहाँ पर मौजूद हैं आलिम उमूर के माहिर डॉक्टर कंदील अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
कंदील साहब, अभी जैसा कि सौरभ कुमार शाही साहब भी कह रहे थे और ये बात खबरों में भी आ चुकी है कि ये कि जो रिपोर्ट अभी ताज़ा मई के आखिर में आई, अलबत्ता उसकी गुज़िश्ता रिपोर्टों में भी बारहा यह बात कही गई है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम में किसी तरह का कोई इनहराफ नहीं, और एक बार फिर साफ कह दिया गया कि कोई इनहराफ नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि मगरिब और ख़ास तौर पर अमेरिका के पास अब कोई और बहाना है कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इनको डिरेल कर दिया जाए?
देखिए, पिछले 15 साल या 20 साल के दौरान ईरान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से आलमी सतह पर पाबंदियां आयद कीं और उसका बहाना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाया गया, सबसे पहली बात यह है कि वो पाबंदियां भी गैर मुनसिफाना थीं, इसलिए कि आप जो जनेवा में मुज़ाकरात शुरू हुए हैं या जो भी प्रोसेस शुरू हुआ है, इससे पहले भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जिसको प्रजेंट करके अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ ये कह सकते हैं कि ईरान का प्रोग्राम जो है वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए है। जो आईएई की जितनी भी रिपोर्ट्स इससे पहले आई हैं उसमें ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है इसके जो पीसफुल पर्पसेस हैं उसको रेटिफाई किया गया, लेकिन उसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से एक लास्ट पे पैराग्राफ डाल दिया जाता था कि इस तरह का जो प्रोग्राम है ये फ्यूचर में मिलिट्री यूज़ की तरफ जा सकता है। ज़ाहिर है कि दुनिया भर के जितने भी एटमी प्रोग्राम हैं, जिन जिन ममालिक के भी हैं, अगर वहाँ के ममालिक चाहेंगे अपनी कैपेबिलिटीज़ को इनक्रीज़ करेंगे तो वो ज़ाहिर है उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ईरान की इखलाकी, कानूनी और सिफारती फतह थी कि अमेरिका और मगरबी ताकतें इस वक्त वो टेबल टॉक के लिए आमादा हो गई हैं, और ये ईरान का शुरू से मौक़िफ़ था कि मसाइल को टेबल टॉक के ज़रिए हल करना चाहिए और पाबंदियों या ताकत के इस्तेमाल से इस तरह के मसाइल हल नहीं होते। लेकिन इस वक्त चूँकि एक
डॉक्टर जाफर अजी खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मुज़ाकरात चल रहे हैं लेकिन इस दरमियान अमरीकी कांग्रेस में जो इंतहा पसंद धड़ा है उसका ये कहना है कि मुज़ाकरात इस तरह से होने चाहिए कि सब पर इत्तेफाक हो या किसी चीज़ पर इत्तेफाक ना हो, तो क्या अमरीकी कांग्रेस के इस इंतहा पसंद धड़े की ये शर्त कहीं से मंतिकी नज़र आ रही है, जबकि हो ये रहा है कि धीरे धीरे और कदम ब कदम आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका ये कहना है कि या तो हर चीज़ पर इत्तेफाक हो या किसी पर इत्तेफाक ना हो, तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिकी हुकूमत कांग्रेस के इस शर्त को, इस मुतालबे को मानने पर तैयार होगी?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो शुरू में हमने कहा कि एक ब्रॉडर पिक्चर और एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, यही मसला था जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है उसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ किया जा रहा था, यानी एटमी प्रोग्राम में जो है वो टेक्निकली और हर हवाले से कोई जो है वो डेविएशन तो थी नहीं, यानी ईरान ने जो है वो आप देखिए कि जो आईएई के साथ मुकम्मल जो है वो तआवुन किया, जो ईरान के रिएक्टर थे वो उनकी सुपरविज़न में थे और जो काम हो रहा था वो जो है वो बिल्कुल जो है आईएई की सुपरविज़न में था, तो ये तो एक जो है वो एक्सक्यूज़ था बहरहाल ईरान पे जो है वो एक एज ए प्रेशर जो है उसको यूज़ किया जा रहा था, ये बात तो कंफर्म है, यानी खुद यूएस जानता है और जो इवन जो है इंटेलिजेंस सर्विसेज की जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पिछले सालों में आई उसमें ये वाज तौर पे कहा गया कि ये जो प्रोग्राम है ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए नहीं है, और ईरान ख़ुद भी जो है इसकी तरफ अंदरूनी हवाले से भी जो ईरान के अंदर जो है वो रिलीजियस लीडर थे उन्होंने जो है वो इस किस्म के हथियार की मुकम्मल जो है वो मुखालफत करते हैं, उन्होंने जो है वो जो सद्दाम को वेस्ट ने वेपन फ्राम किए थे 80s में उसकी भी शदीद मजम्मत की थी, तो ये प्रोग्राम जो है वो एक पीसफुल पर्पसेस के लिए था, एक इनर्जी जो है डेवलपमेंट के लिए था और मेडिकल आइसोटोप्स और उस यूज़ के लिए था, तो अब और ईरान को जो है वो ईरान मिलिट्री हवाले से अब इतना और इकोनॉमिक हवाले से एक रीजनल पावर बन चुका है कि उसे जो है न्यूक्लियर जो है ज़रूरत ही नहीं है, और ईरान ने कितनी दफ़ा ये वाज़े किया है कि ये जो है इस किस्म के हथियार जो है इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए और जो है डिफेंस के लिए ख़तरनाक, उसके लिए ख़तरनाक है और डिफेंस के लिए भी यूज़फुल नहीं है, तो अब ये जो है वो एक बहाना था, एक एक्सक्यूज़ था। अब जो कांग्रेस जो कुछ कर रही है तो उसके अंदर जो कांग्रेस के अंदर लॉबीज़ है, आप देखिए कि रिपब्लिकन खसूसन जो है वो इसके मुखालिफ है, जो नियो कॉन है वो इसके मुखालिफ है, जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है वो इसके मुखालिफ है, जो यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो प्रेशर ग्रुप्स है कांग्रेस के अंदर जो है वो मुखालिफ है, अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और कांग्रेस में। तो ये है न्यू कॉन ग्रुप, रिपब्लिकन ग्रुप, ज़ायोनिस्ट लॉबीज जो है, तो ये जो है जो बहरहाल उनके अंदर जो निस्बतन मॉडरेट है, जो ये चाहते हैं कि ईरान के साथ जो है वो टेंशन को कम किया जाए। और चूँकि ईरान, उसमें बेसिक जो वजूहत है वो यही है कि ईरान ने जो है वो, ईरान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ईरान मिडल ईस्ट में एक जो है लिटरेट कंट्री है, ईरान जो है वो निस्बतन एडवांस्ड डेमोक्रेसी है एज़ कम्पेयर टू सम जो अरब स्टेट्स है पर्शियन गल्फ में। तो ईरान ने कभी जो है इस रीजन में जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ईजाद नहीं किया जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर सके, जैसे आपने देखा सऊदी अरब, कतर और बाकी दूसरे ममालिक जो है वो दाइश, ISIL, ISIS, ये सब किस किस्म के ग्रुप्स की कर रही है। तो अब ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो पब्लिक है, पब्लिक ओपिनियन है या जो उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अपनी जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमेशा उससे सवाल करते आ रहे हैं कि ईरानोफोबिया और ईरान के साथ खुद वेस्ट के अंदर भी टेंशन की कोई लॉजिक नहीं बनती। तो वो जो एक्सक्यूज़ था वो भी उनको जो है वो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ करते आ रहे थे, तो वो अब मौजूदा जो मीडिया और जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है, तो वेस्ट के लिए इसको जस्टिफाई करना जो है, ईरानोफोबिया को जस्टिफाई करना जो है बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए वेस्ट ने जो, और जो इंटरनेशनल अब पोजीशन है जो रशिया और यूक्रेन की है और दूसरी जगह जो इस रीजन में चल रही है, तो सब एलिमेंट्स को देखकर वेस्ट जो है वो ईरान के साथ जो है वो निगोसिएशन पे आया और टेबल टॉक पे आया, और जिसमें मामूलन ये फील हो रहा है कि ईरान जो है वो, ईरान का राइट जो है वो तस्लीम कर लिया गया और ईरान को जो है एक अपर हैंड है। तो अब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जो ड्राफ्ट, जो इनिशियल ड्राफ्ट हो रहा है, ये किसी ना किसी नतीजे पर जो है वो पहुँचेगा।
बहुत शुक्रिया नाज़िम, हमारी गुफ्तगू मेहमानों से जारी रहेगी लेकिन यहाँ पर मुख्तसर सा वक्त ये एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। सौरभ कुमार शाही साहब, जो माहौल है इस वक्त वियना में और जिस तरह से ड्राफ्ट लिखने का काम शुरू हुआ है, उससे ये लग रहा है कि काम जो है वो कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस का कहना है कि नहीं, अगर इत्तफाक या समझौता कोई मायदा हो तो एक साथ हो, सबका हो या किसी का ना हो। तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस का वो धड़ा जो इसकी मुखालफत कर रहा है इस अमल की कि आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया जाए, ये समझ रहा है कि अब ग्रुप और ईरान कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं?
देखें, पिछले राउंड में जो निगोशिएशंस हुए थे उसमें ये पूरी कोशिश की गई थी कि ये जो टॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, और ये कोशिश जो है वेस्ट की तरफ से की गई थी क्योंकि कुछ ऐसे डिमांड्स कर दिए गए जिनका कि कोई वजूद ही इंटरिम डील में नहीं था। आपको पता है जब इंटरिम डील हुई थी तो ये बात कही गई थी कि जो चीज़ें, जो एस्पेक्ट्स इंटरिम डील में हमने डिस्कस की है उन्हीं को हम फाइनल डील में सॉलिडिफाई करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डील में। तो कुछ एलिमेंट्स जैसे मैं बताऊं, इन्होंने परचिन बेस का मुआयना करने की फिर से डिमांड कर दी, जबकि ईरान ने कहा है कि परचिन का हम मुआयना दो बार करवा चुके हैं IAEA को। और उसके बाद इन्होंने ईरान को कहा कि आप अपनी मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में जी बताएं, और ये तमाम ऐसी चीज़ें जो इसराइल के इंसिस्टेंस पे वहाँ पर इंक्लूड की गई। पर ईरान ने कहा कि देखें, हमें कोई ये नहीं है, आपको मानना है तो माने, इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं हो सकती, आप कहें हम अपना सामान लेके वापस जो है तेहरान चले जाते हैं। तो उसके बाद जिसे ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो उन्होंने ब्लफ खेला था, उस ब्लफ को ईरान ने कॉल कर दिया। अब जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट और बराक ओबामा वो ये चाहते हैं कि डील्स जो है वो हो जाए, अगर वो ये चाहते हैं, क्योंकि देखें अभी हम भी उनका दिमाग नहीं पढ़ सकते कि अभी उनकी क्या मनसहत है, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि डील हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊं, अमेरिकन सिस्टम में जी वो बहुत सारे ढकुसले होते हैं डेमोक्रेसी के दिखाए जाते हैं, पर अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि कोई चीज़ हो जाए तो फिर वो फाइनली हो ही जाती है। फिर वो कितना भी लॉबी हो, कुछ भी हो, कांग्रेस जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आपने देखा सीरिया के मामले में क्या हुआ कि अगर बराक ओबामा ने चाहा कि अटैक ना हो सीरिया पर तो कांग्रेस कहती रह गई कि वो सीरिया पर अटैक नहीं हुआ। ये उनका एक तरीका है, ये दुनिया को दिखाते हैं कि जी देखें हमारे यहाँ बड़ा वाइब्रेंट सिस्टम है जी, हमारे यहाँ तो कांग्रेस अलग डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट अलग डिसाइड करती है, उनका आपस में बहुत इख्तलाफ होता है, ये सब कहने की बात है। हाँ, वो बहाना जरूर बनाते हैं। ऐसा हो सकता है कि ओबामा को ये खुद ना चाहते हो कि बराक ओबामा की डील हो और फिर वो ठीकरा जो 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 है फोड़ दिया जाए कांग्रेस के ऊपर। लेकिन अगर दिल में बराक ओबामा और स्टेट डिपार्टमेंट के दिल में ये बात होगी कि कॉम्प्रिहेंसिव डील हमें साइन करनी है, तो फिर कोई कांग्रेस, कोई लॉबी उसको रोक नहीं सकती। अमेरिका वर्क्स लाइक डैट। अब इसमें ये बड़ी बात है कि ओबामा कैसे इसको करेंगे, तो कई जो इस तरह की जो डील्स आपने देखे हैं, जो सॉरी जो सैंक्शंस आपने देखे हैं, वो प्रेसिडेंशियल डिक्री के थ्रू साइन किए गए हैं, और बराक ओबामा को अधिकार है कि वो इसको डिक्री को विड्रॉ कर लें। और अभी भी जो कोशिश हो रही है वो यही हो रही है कि इसको बाईपास कर दिया जाए कांग्रेस के थ्रू, और 2016 तक जो कि ये सैंक्शंस अभी तक लगे हुए हैं उन पे जब 2016 में वापस साइन करने की बात आएगी तो उस पर साइन ना किया जाएगा और वो खुद ब खुद जो है वो जिसे कहते हैं कि बाई डिफॉल्ट वो एक्सपायर हो जाएगा सैंक्शंस, जो बड़े सैंक्शंस हैं। जो छोटे सैंक्शंस हैं जिसको कि स्टेप बाय स्टेप उठाने हैं, वो ऐसे सैंक्शंस हैं जो कि प्रेसिडेंशियल डिक्री के थ्रू आयद किए गए हैं, और उसको अगर बराक ओबामा 6-6 महीने के टेन्योर में या अगर चाहें तो 1-1 साल के टेन्योर में बढ़ा के फाइनली जब उनकी उनका टेन्योर खत्म होगा तो उसे वो राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इसीलिए इतनी पावर एग्जीक्यूटिव को वहाँ दी गई है कि उनको लेजिस्लेचर की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। वो एक ढकोसला होता है वो दिखाने का कि जी देखें जी हम तो करना चाह रहे थे लेकिन लेजिस्लेचर में हमारे पास उतनी पावर नहीं है
जी।
अगर मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट और बराक ओबामा के दिल में होगी कि कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जाए तो कोई कांग्रेस कोई लॉबी फिर इसको रोक नहीं पाएगी
जी। बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं इस्लामाबाद। डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, अभी कुछ दिनों कबल यूरोपीय यूनियन के जो खारजा ताल्लुकात की कौंसल है उसने अपना एक इजलास तश्कील दिया, तो उसके बाद एक रिपोर्ट जारी की थी, उसने वाशिगाफ लफ्ज़ों में कहा था कि अगर इस बार के मुज़ाकरात अमरीका या अमरीकी कांग्रेस की वजह से नाकाम हो जाते हैं तो यूरोप को चाहिए कि वो ईरान पर आयद पाबंदियाँ हटा लें और इस सिलसिले में कदम आगे बढ़ाए। तो क्या यह समझा जाए कि अब यूरोप का पैमाने सब्र लबरेज होता जा रहा है इस ताल्लुक से?
देखिए सिर्फ यूरोप का नहीं, मैं समझता हूँ दुनिया की तरफ से डिमांड आ रही है अमेरिका के अलावा, इसलिए कि जो दुनिया समझ रही है कि जिन जिन ममालिक ने एनपीटी को साइन किया हुआ है यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, ये उनका राइट बनता है कि वो सिविल यूज़ के लिए एटमी टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और उनको इजाज़त दी जाए, बल्कि ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी जाए बल्कि फैसिलिटेट किया जाए इंटरनेशनली कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा सकें। अब अगर ये 20 जुलाई तक ये कंप्रिहेंसिवली कोई एग्रीमेंट तक पहुंचना चाहते हैं, मेरा ख्याल ये है कि अंडर एनपीटी और अंडर आईएईए रूल्स ईरान के वो कानूनी हकूक तस्लीम करने पड़ेंगे कि वो अपना पूरा अमन एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ा सके। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि दो बड़ी चीज़ें हैं जो इस वक्त इस ड्राफ्ट लिखने में मुश्किल का बायस बन रही है। एक तो ये कि ईरान के प्रोग्राम को कंट्रोल करने की बजाय वो रोल बैक करने की बात कर रहे हैं, और रोल बैक करके कैप करने की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, यानी स्ट्रेटजी ये नज़र आ रही है पहले रोल बैक कराया जाए और फिर उसको कैप कर दिया जाए। दूसरी तरफ जो उनका वादा था कि ग्रेजुअली ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी, उसकी तरफ से भी कोई वो ड्राफ्ट के अंदर ऐसी चीज़ लाना नहीं चाह रहे कि जिसके तहत ईरान को फैसिलिटेट किया जा सके कि उसके खिलाफ आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जाएं। अब इस तरह की जब रुकावटें खड़ी की जा रही हैं तो ज़ाहिर इन रुकावटों में 20 जुलाई तक तो किसी कंसेंसस तक पहुँचना मुश्किल नज़र आता है, लेकिन यूरोप की तरफ से और बाकी दुनिया की तरफ से ईरान का जो लॉजिकल एक स्टैंड है वो उन तक पहुंच चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ होती कि वो अपने मिलिट्री यूज़ के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना चाहता है तो आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स हैं वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी जो डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो रही है, कैमराज लगे हुए हैं, और फिर इंटरनेशनली जो इंस्पेक्टर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से कोई ऐसे एविडेंस कोई क्लूज आते हैं कि पता चलता है कि इसका कोई मिलिट्री यूज़ है। लेकिन ईरान की तरफ से फुल सपोर्ट की बजाय फुल कोऑपरेशन के बावजूद भी अमेरिका की तरफ से जो डिमांड्स आ रही हैं वो इलॉजिकल हैं, और उन इलॉजिकल डिमांड्स को देखते हुए मेरा ख्याल है यूरोप की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी इस तरह की इलॉजिकल डिमांड्स को ख़त्म ना किया और ईरान के साथ किसी एग्रीमेंट तक ना पहुंचा तो अमेरिका को साइड पे करके फिर यूरोप या दुनिया के बाकी ममालिक अपनी डील कर सकेंगे।
जी बहुत शुक्रिया, वक्त रहा मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि यूरोप के खारजा ताल्लुकात की जो कौंसल है उसने इस तरह की बात की कि अगर अमेरिका जो है वो हठधर्मी पर आ रहा तो यूरोप को चाहिए कि वो पेश कदम हो और पाबंदियाँ हटाए ईरान के ख़िलाफ़, और इससे एक जुमला उसने कहा कि पाबंदियाँ हटाने से और ईरान के हक़ को तस्लीम करने से एनपीटी मजबूत होगा। ये तो यूरोप की जो खारजा ताल्लुकात की कौंसल उसका बयान है, लेकिन अभी हाल ही में आपने यकीनन सुना होगा कि फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा फैबियस जो हैं उन्होंने कहा है यूटर्न लेते हुए कि नहीं साहब, ईरान को तो सिर्फ चंद सौ तक ही जो है सेंट्रीफ्यूज मशीनें रखनी चाहिए। एक तरफ से ताल्लुकात कौंसल जो है यूरोप की वो ये कह रही है, दूसरी तरफ से फ्रांस ये कह रहा है, तो क्या समझा जाए कि खुद यूरोप में ही इस मसले पर कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफ पाया जा रहा है?
देखिए वो जो कौंसल है उसका जो स्टांस है वो एक लॉजिकल है। अब ये कि खुद यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है उसको जो यूरोप के बड़े मुल्क जैसे आप समझ लीजिए कि फ्रांस है, ब्रिटेन है और जर्मनी, इस किस्म के मुल्क जो है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, वो जो उसके जो यानी ख़ुद अपने बनाए हुए लॉज हैं उनको फ्लाउट करने की और उनकी वायोलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कौंसल का बिल्कुल बयान ठीक है कि जब जो है इंस्पेक्टर्स की तरफ से या जब जो है वो आपकी मॉनिटरिंग के नतीजे में पिछले सालों में कोई आप क्लू या कोई कुछ भी प्रोवाइड करने में जो है वो नाकाम हो चुके हैं, तो या ये है कि खुद यूरोपियन इंटेलिजेंस सर्विसेज या खुद यूएस की जो है कोई ऐसी मिलिट्री एस्पेक्ट्स के जो है उनको एविडेंसेस नहीं मिले, तो ये जो अमेरिका की टेंशन्स जो है वो ईरान के साथ चल रही है उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यूरोप को हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो ईरान में जो है वो ऑयल गैस और दूसरे फील्ड्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, और ईरान जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है और ईरान जो है वो एक रीजनल पावर है, और इसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के अलावा और भी जो है ईरान और यूरोप के जो है वो कितने डिकेड्स पर मुश्तमिल जो है वो रिवायती ताल्लुकात भी हैं, तो ये सब कुछ जो है यानी एक यूरोपियन पब्लिक की तरफ से जो है वो जो गवर्नमेंट्स है ये जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो प्रेशर में हैं, लेकिन जहरी सी बात है कि ये मुल्क जो कि ज़्यादातर इस न्यूक्लियर ईरान के न्यूक्लियर मसले को पोलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, जिसमें खुद यूएस शामिल है, जिसमें फ्रांस शामिल है, जिसमें ब्रिटेन शामिल है, तो पिछले दिनों में पिछले महीनों में इन मुल्कों की भी जो है वो मौक़िफ में आप देखें कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर आई है, लेकिन ये चूँकि इतना वो पेचीदा मसला जो है अभी आप अगर देखें तो ऐसा फील होता है कि जो इनिशियल ड्राफ्ट है वो हो जाएगा, लेकिन उस पर सिर्फ दो मसाइल है कि एक वेस्ट जो है वो अपनी इलॉजिकल डिमांड्स को तर्क कर दे कि देखिए इन इशू इसमें जो है जो इररेलीवेंट इश्यूज हैं जैसे ईरान के मिसाइल या दूसरे जो है उसको उठाना जो है वो जिसका ईरान कह चुका है कि हम किसी इररेलीवेंट डिमांड को जो है वो एज ए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक तो ये कि इररेलीवेंट डिमांड्स को जो है उन्हें जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, दूसरा ये जो ईरान से जो डिमांड्स की जा रही है वो लॉजिकल हो, तीसरा ये कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो उसके जो है सिविलियन पर्पसेस है और जो मेडिकल आइसोटोप्स और जो इलाज वगैरह में है जो उसको जो है वो जारी रख सके, तो इन सारी जो है और फिर ये कि खुद वेस्ट जो है वे बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेप्स ले इन सेंक्शंस को रिमूव करने के, तो ये ड्राफ्ट जो इनिशियल ड्राफ्ट है इसकी जो है चांसेस अचीवमेंट की चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी आप बात याद रखें कि अगर वेस्ट ये चांस लूज़ करता है तो फिर जो है जो इंटरनेशनल ओपिनियन भी उनके ख़िलाफ़ जाएगा और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो वेस्ट जो है ईरान के साथ टेंशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकता था और उसने नहीं की, या वेस्ट जो है ईरान के साथ जो इकोनॉमिक टाइज मेंटेन कर सकता था और नहीं की, वेस्ट जो है डिप्लोमेटिक टाइज को जो है वो बेहतर बना सकता था, और फिर ये कि ईरान ऐसा मुल्क है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी में की मेंटेनेंस में जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, जबकि जो दूसरे मुल्क है आप देखा कि इसराइल है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, जो भी यानी इसराइली रजीम, तो ये जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है वो थ्रेट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ईजाद कर रहे हैं जो कि खुद वेस्ट के लिए भी जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं, तो ईरान जो है वो एक जो है जो पिछले सालों में ईरान ने डेमोक्रेसी को तजर्बा किया या ईरान ने जो सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशन जो है इंटरनेशनल लॉ के और यूएन के फ्रेम में आगे बढ़ रहा है, तो एक ऐसा मुल्क इस खित्ते में जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अहमियत देता है, तो वेस्ट का जो है उसके साथ टेंशन जो है उसकी कोई जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती।
बहुत शुक्रिया आपका। सौरभ कुमार शाह साहब ईरान बार रहा ये कहता रहा, और अभी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ साहब ने भी अपने बयान में कहा है कि अगर मुकाबिल फरीक यानी सामने वाली पार्टी में ज़रूरी सियासी अज़्म इरादा पाया जाए तो हतमी समझौते तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है, और आप देखें कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ और अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा विलियम बर्न्स के दरमियान भी बातचीत हुई है, यानी जो वियना मुज़ाकरात हो रहे हैं इससे हट कर, और फिर ईरान फ्रांस और ईरान रूस के दरमियान, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ मुज़ाकरात के लिए हो रहे हैं या वाकई कहीं कोई संजीदगी पाई जा रही है?
देखें, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा दो पार्ट्स में। जहां तक गैर अमेरिकी जो निगोशिएटर्स हैं उनकी बात जहां तक हो रही है, तो उनकी तो दिली इच्छा ये है कि ये निगोशिएशन जो है वो हो जाए। क्योंकि मेरा खुद का मैं चूँकि पिछली दफ़ा जब वियना में निगोशिएशन हुआ था मैं उधर था, तो मेरी जो इन लोगों से बात होती थी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स थे जो खासकर बाकी ममालिकों के, तो यूरोप में जो एक मेरा अंदाज़ा है कि जर्मनी जो जो बड़े मुल्क हैं उसमें जर्मनी, इटली और स्पेन, इन तीनों में और प्रोबेबली डेनमार्क में जो है वो बड़े कंट्रीज़ में, इनकी इनको बहुत चाह है कि डील जो है वो किसी तरह से हो जाए, क्योंकि इनको बहुत इकोनॉमिक नुकसान जो है वो पहुंच रहा है डील ना होने से। जैसा कि इन्होंने बताया अभी गेस्ट ने अपने स्टूडियो में भी कि यूरोप में देखें उनके उनके यहाँ जो सैंक्शन रजीम था, एंटी ईरान सैंक्शंस जो थे, वो ऑलरेडी वो फ्लाउंडर कर रहे हैं। स्पेन में खासकर और इटली में कई कोर्ट केसेस हुए हैं उसके अगेंस्ट, और वो कोर्ट ने इस पर सो मोटो लेके कहा है कि जी ये सैंक्शन जो इलीगल हैं, आप अमेरिकन सैंक्शन को क्यों फॉलो कर रहे हैं, यूएन से तो इसका कोई मैंडेट है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक फ्रांस का सवाल है, देखें फ्रांस एक डुप्लिसिटी उसकी होती है इंटरनेशनल उसमें, और वो डुप्लिसिटी में फंसा हुआ है। सबसे पहले इंटरिम डील के बाद जिसने पूरी दुनिया से सबसे पहले इकोनॉमिक निगोशिएशन के लिए टीम भेजी तेहरान, वो फ्रांस ने भेजी थी, लेकिन वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि देखें वो अमेरिका के कितने साथ है। तो उनका जो ये जो डबल फेस्ड डिप्लोमेटिक मूव्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाता है हर तरफ। अमेरिका की जहाँ तक बात है, तो मैं जैसे पहले भी आपसे गुजारिश इसकी कि मैं इस समय आपको ये बता नहीं पाऊँ, क्योंकि मेरी उनके डिप्लोमेट से इस लेवल पे कोई कभी बात नहीं हुई जिससे लग सके कि उनके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, जहाँ तक रशिया का, चाइना का और बाकी यूरोपियन कंट्री का सवाल है, इंक्लूडिंग फ्रांस, मैं आपको बता दूँ कि वो डील करने में वो जो भी वहाँ पे उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हों, लेकिन वो सबसे पहले दौर के उसने जो है अपनी इकोनॉमिक टीम भेजी और वो दोबारा भी भेजेगा। जो यूरोप में खासकर और ये जो बाकी ममालिक हैं ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये डील हो और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सेस मिले। क्योंकि देखें ना, ईरान में एक्सेस मिलना, सिर्फ ईरान में एक्सेस मिलना नहीं है, सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिलना भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना है, सीरिया को स्टेबलाइज करना है, वो तमाम चीज़ें ईरान से जुड़ी हुई है। तो जो एक ब्रॉडर इनका एस्पेक्ट्स है वो ये जरूर चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जाए। मैं फिर वही कहूँगा कि इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता कि यूएस के दिल में अभी क्या चल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ कुमार शाही साहब, हम कंदील अब्बास साहब के भी शुक्रगुजार हैं और डॉक्टर जाफर अजी खान साहब का भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगु मुलाहजा फरमाई। वियना में मुज़ाकरात जारी हैं और कल तक भी जारी रह सकते हैं जैसा कि पहले भी ऐलान किया जा चुका था, लेकिन इस दरमियान जैसा कि वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ साहब और दीगर ईरानी हुकाम ने बारहा कहा कि अगर कामयाब बनाना है मुज़ाकरात को और हतमी नतीजे तक पहुँचना है तो मुकाबिल फरीक में सियासी अज़्म इरादा ज़रूरी है, और जैसा कि इन्हीं मुज़ाकरात के दरमियान बाज़ गैर मंतकी मुतालबात मुकाबिल फरीक की जानिब से आए हैं, तो उस पर वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ साहब ने कहा कि मुकाबिल फरीक को चाहिए कि वह हकीकत पसंदाना तर्ज अमल अपनाए, इसलिए कि ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात में ईरान के पास खोने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चूँकि ईरान 20% तक यूरेनियम अफजूदा कर चुका है और उसकी तवानाई वो हासिल कर चुका है, और जहाँ तक पाबंदियों और धौंस और धमकी की बात है तो ईरान ने पाबंदियों को अबूर कर लिया है, इस मरहले से वो गुज़र चुका है, और यही वो हकीकत है जिसका एतराफ़ ख़ुद यूरोप की ताल्लुकात खारजा ताल्लुकात की कौंसिल ने भी किया है कि अगर अमरीका अपनी हरदर्मी पर आड़ा रहता है तो यूरोप को चाहिए कि वह पाबंदियाँ हटाए, चूँकि यूरोप को ज़मीनी हकायक का इदराक हो चुका है कि ईरान पाबंदियों की कमंद में या पाबंदियों की जाल से बाहर निकल चुका है, और अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो यूरोप की बड़ी कंपनियों को और यूरोप के सरमायाकारों को, इसलिए कि ईरान अब एक ऐसी हकीकत बन चुका है कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और शायद इसी की तरफ इस कौंसिल ने इशारा भी किया कि अगर पाबंदियां हटा ली जाती हैं तो NPT भी मजबूत होगा और इलाके में कशीदगी भी कम होगी और कशीदगी में भी खात्मा होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।